तो आज हम बात करेंगे ब्लिसफुल न्यूरोबिक क्राउन चक्र, मास्टर चक्र, जो हमारा इस यूनिवर्स के साथ, खुद के साथ कनेक्शन पॉइंट है। साइको न्यूरोबिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका बेस ही यही है, वी ऑल आर MBBS, माइंड ब्रेन बॉडी एंड सोल। और ये जो माइंड ब्रेन बॉडी सोल का सिस्टम है, ये सिस्टम कनेक्टेड है सोर्स ऑफ एनर्जी से, डिवाइन पावर के साथ। लेकिन कैसे? इस चक्र के थ्रू, सहस्राज चक्र, क्राउन चक्र, क्योंकि इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, 1000 इसमें सिम लगे हुए हैं, इसकी ओपनिंग पॉइंट्स हैं, जो हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है। 1000 चिप्स लगी हुई हैं इसमें डाटा डाउनलोड करने के लिए। ये हमारा एंटीना है, सर्वर है, ट्यूनिंग स्टेशन है, जो हमें ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है, डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करता है, और इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों को रिसीव करने के लिए हेल्प करता है। तो इस चक्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेटेलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी। इनफैक्ट अगर हमें मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस होना है तो भी हमें इस चक्र को एक्टिवेट करना होगा, बैलेंस करना होगा, ताकि हम लाइफ फोर्स एनर्जी को ट्रैप कर सके, कनेक्ट कर सके। आज हम एन ब्लिसफुल साइको न्यूरोबिक के द्वारा इस चक्र को एक्टिवेट करना भी सीखेंगे और इस चक्र की पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखेंगे, फिर जानेंगे कि इसका डेफिशिएंसी और एक्सेस और इम्बैलेंस होने से क्या क्या डिजीज होती है, क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये चक्र इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों को रिसीव करने में मदद करता है। जब आप मेडिटेशन के दौरान, डीप मेडिटेशन के दौरान अपनी कॉन्शियसनेस को, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस को, इंटेलेक्ट को डिवाइन पावर के साथ, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तब आपको यह चक्र मदद करता है वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में, डाउनलोड करने में। यानी कि जैसे हम अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू या गैजेट्स के थ्रू वाईफाई सर्वर से, क्लाउड से या गूगल से कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं, पहले सर्च करते हैं फिर डाउनलोड करते हैं, अगर हमारा सर्वर ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन सही है, तो इंफॉर्मेशन इजीली डाउनलोड होता है। सेम टू सेम अगर हमारा क्राउन चक्र, ये जो एंटीना है, अगर ये बैलेंस्ड है, अलाइन है, तो ये चक्र हमें मदद करता है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने में। यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन मींस जैसे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सारी इंफॉर्मेशन का रिसोर्स है, सेम टू सेम इस ब्रह्मांड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी क्लाउड में ही है। और इस क्लाउड के इंफॉर्मेशन में से हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे हम कोई रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं और जैसे ही ट्यूनिंग प्रॉपर होती है तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का स्टेशन ट्यून हो जाता है और गाने बजने शुरू हो जाते हैं। सेम टू सेम हमें अपनी लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डाउनलोड करना होगा, पहले ट्यून करना होगा अपने आप को। लेकिन ये सब चीजें होंगी कैसे? क्राउन चक्र के माध्यम से। क्राउन चक्र हमने ट्यून करके, अगर बैलेंस करके, अलाइन कर लिया और यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग कर लिया, मैच कर लिया, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। मैंने ऐसे कई स्पिरिचुअल गुरुस के साथ अनुभव प्राप्त किया जो डिफरेंट लैंग्वेज को यहां पर डाउनलोड कर लेते हैं। उनके पास ऐसे कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं कि वो अपने क्राउन चक्र की फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करवाकर वहां से डिफरेंट लैंग्वेज डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कभी कॉलेज स्कूल नहीं गए, उनको फराटेदार इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन लैंग्वेज बोलते हुए देखा, वो ऐसे योगी डाउनलोड कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूं, मेडिटेशन में हम जब फिफ्थ कोश में एंटर कर लेते हैं, जो पांच कोश हैं हमारे शरीर के, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और ब्लिस बॉडी, तो ये ब्लिस बॉडी जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और अद्भुत चीज है। अगर हम इस फिफ्थ लेयर को एक्सेस कर लें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है। ये ब्लिस लेयर, और ये ब्लिस लेयर है क्राउन चक्र के साथ जुड़ी हुई, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, कई बार उसके सॉल्यूशंस हमें दूसरों से नहीं मिलते, तो फिर वो कहां मिलेंगे? अपने अंदर। और अपने अंदर जुड़ने के लिए कैसे मिलेंगे? वो तीन लेवल पर मिल सकते हैं। या पहला लेवल है मेंटल बॉडी का, माइंड का लेवल, यानी कि आपने जो पुराने अनुभव लिए हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, वो इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी प्रेजेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम टू सेम कई बार माइंड के लेवल पर सॉल्यूशन नहीं मिलते, फिर क्या करना है? फिर आपको अपने इंटेलेक्चुअल कोश में जाना है, विज्ञानमय कोश में, आपकी इनर वॉइस, बहुत सारे आंसर्स आपको वहां पर मिलेंगे। यानी जब आपका माइंड ना बोल देगा, आपके पास कोई पुराना अनुभव नहीं है, पुराना एक्सपीरियंस नहीं है उस घटना को लेकर, ये जो समस्या आपके सामने आई हुई है उसका कोई पुराना अनुभव ही नहीं है, फिर भी आपकी इंटेलेक्ट आपको कुछ इनसाइट देती है, वो बताती है कि कैसे बिहेव करना है, क्या डिसाइड करना है। ये है इंटेलेक्चुअल कोश, इंटेलेक्चुअल लेयर, एनर्जी लेयर। लेकिन कई बार आप अपनी इनर वॉइस से भी आंसर नहीं पाते, यानी कि माइंड का लेवल भी फेल हो जाता है और इंटेलेक्चुअल लेवल भी, तब आप सुप्रा कॉन्शियस माइंड, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा और रेज करें, ब्लिस लेयर में एंटर करें। और जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे, ब्लिस लेयर में एंटर करेंगे, तो आप उस प्रेजेंट की सिचुएशन को, प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सॉल्यूशंस आप डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। यानी ये जो पांच लेयर हैं, फिजिकल, एनर्जी, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और ब्लिस, दीज आर फाइव लेयर्स ऑफ बॉडी। वी हैव फाइव एनर्जी लेयर्स। द फर्स्ट लेयर विच इज वाइब्रेटिंग एट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड फिजिकल बॉडी, एंड द रेस्ट ऑफ द फोर दे आर वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो हमें एक एक लेयर को अगर एक्सेस करना है तो अपनी वाइब्रेशंस बढ़ानी होंगी। फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जाने के लिए थोड़ा हाई वाइब्रेशन चाहिए, तब हम एनर्जी लेयर में जा सकते हैं, और एनर्जी लेयर से हायर वाइब्रेशन चाहिए मेंटल लेयर को एक्सेस करने के लिए, और मेंटल लेयर से हायर डायमेंशन में जाने के लिए हायर वाइब्रेशन चाहिए, यानी कि मेडिटेशन का और डीप लेवल। इसी प्रकार से जो लास्ट लेयर है ब्लिस लेयर, उसे अनुभव करने के लिए आपको डीप मेडिटेशन में जाना होगा, और ये क्राउन चक्र आपको मदद करता है अपनी कॉन्शियसनेस को ब्लिस लेयर में ले जाने के लिए। समझते हैं इस चक्र की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसकी पैथोलॉजी, यानी कि कौन सी डिजीज इसके डिस्टर्बेंसेस से होती हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्राउन चक्र सहस्रार, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, इसके साथ जो ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं, ये है हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस हालांकि ब्रेन का हिस्सा है जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और पीनियल ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। तो क्राउन चक्र हमारे नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से भी, मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का। लेकिन अगर ग्लैंड्स की बात करें तो ये पीनियल ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र, ये दोनों चक्र नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये दो चक्र हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम और इम्यून एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल होता है। लाइफ प्रिंसिपल क्या है इसके? लाइफ प्रिंसिपल है अवेयरनेस, विजडम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कर्मास, डिवाइन पावर्स, डिवाइन कनेक्शन। क्राउन ऑफ स्कल यहां पर सिचुएटेड होता है। कलर वायलेट, बीज मंत्रा कल हमने सीखा था ओम। ओम का जो हम पार्ट है, हमिंग साउंड है, वो बीज मंत्र है क्राउन चक्र का। यहां पर एलिमेंट लाइट और थॉट्स ये सिचुएटेड होते हैं। सेल्फ नॉलेज, डेमोन अटैचमेंट एंड ईगो, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं, इगोइस्टिक हैं, तो आपका क्राउन चक्र इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, इंबैलेंस हो जाता है। डिजीजेस, यहां पर दो प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, कोमा, एमनीजिया, भूल जाने की आदत, और दूसरा एंडोक्राइन इश्यूज, हार्मोन के इश्यूज, जो हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं उनके ट्यूमर्स, उनका इंबैलेंस, और नर्वस सिस्टम, ब्रेन के साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो इस चक्र से रिलेटेड होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, एक्सेसिव होने से क्या होगा, अगर क्राउन चक्र की एनर्जी एक्सेसिव हो जाए तो ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल एडिक्शन, कंफ्यूजन एंड डिसोसिएशन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा हायर हो जाए, तो आप फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी की ही बात करेंगे, हर समय स्पिरिचुअल एडिक्शन हो जाएगा, साथ ही साथ स्पिरिचुअल ईगो भी आनी शुरू हो जाती है कि मुझे ही मालूम है ये सारी चीजें। उस कंडीशन में ये एक्सेसिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देती है, इस दुनिया से डिसोशिएट कर देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस होना चाहिए, हायर साइड में नहीं होना चाहिए, ना डेफिशिएंट होना चाहिए, ना एक्सेस होना चाहिए। ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल एडिक्शन, कंफ्यूजन एंड डिसोशिएशन फ्रॉम द बॉडी। डेफिशिएंसी, अगर ये अंडर एक्टिव है तो क्या होगा, लो आईक्यू, ईक्यू एंड एसक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल कॉफिशियंट, आईक्यू मतलब इंटेलेक्चुअल कॉफिशियंट, एसक्यू मतलब स्पिरिचुअल कॉफिशियंट। तीन प्रकार के कॉफिशियंट्स होते हैं, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू। ये तीनों बैलेंस होने चाहिए पर्सन के। 1920s में, 40s में, 60s में आईक्यू की बात होती थी, याद होगा आपको, आप जब स्कूल में थे तो ऐसा कहा जाता था इस बच्चे का आईक्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए हाई आईक्यू बच्चे को प्रेफर किया जाता था। इनफैक्ट मैंने देखा हमारे जमाने में कई बार बच्चों का आईक्यू टेस्ट करवाया जाता था, ये जानने के लिए कि इसे कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, इसे डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, और ऐसा कहा जाता था कि हाई आईक्यू वाले बच्चे ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन फिर एक टाइम आया 1990 से लेकर 2000 वाला, 2020s का, इस समय आईक्यू के साथ ईक्यू का इंपॉर्टेंस शुरू हुआ। ईक्यू इमोशनल कॉफिशियंट, क्लास में देखने को मिलता था कि जो बच्चे हाईली इंटेलेक्चुअल होते थे कई बार वो सक्सेस नहीं पाते थे, इनफैक्ट नहीं पाते थे, और जो बैक बेंचर्स होते थे या एवरेज स्टूडेंट्स होते थे उनके लाइफ में सक्सेस ज्यादा मिलता था। इसके पीछे स्टडीज की गई तो स्टडीज में पाया गया कि आईक्यू के साथ साथ इन बच्चों का जिनको लाइफ में सक्सेस मिला इनका ईक्यू बहुत शार्प था। आईक्यू और ईक्यू जिनका ये दोनों बैलेंस है, दोनों एक्टिवेटेड है, दोनों स्ट्रांग है, उसे लाइफ में सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। आईक्यू मतलब नॉलेज और ईक्यू मतलब अपनी इमोशंस को समझना, सामने वाले की इमोशंस को समझना और दोनों को समझकर एक विन विन सिचुएशन पैदा करना। ऐसे लोग जिनका ईक्यू अच्छा होता है उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, सोशल स्किल बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आज 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं, खासकर अभी का जो समय है कोरोना का समय, इस समय में तो हमें एक चीज और समझने की जरूरत है। आईक्यू ईक्यू के बियॉन्ड एक और चाहिए, वो क्या है? एसक्यू, स्पिरिचुअल कॉफिशियंट। बहुत हो गई बात आईक्यू ईक्यू की, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं फॉरेन ऑथर्स की, वेस्टर्न कल्चर में डेनियल गोलमैन, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी है एसक्यू, स्पिरिचुअल कॉफिशियंट, जो अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करता है, जो अपने साथ जुड़ा हुआ है और जो उस हायर वाइब्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल कॉफिशियंट। अगर आपका ईक्यू आईक्यू और एसक्यू तीनों ही एक्टिवेटेड हैं, तीनों ही बैलेंस्ड हैं, तब आप अनस्टॉपेबल हैं। और सबसे बड़ी बात, ईक्यू आईक्यू दोनों अच्छा है, हो सकता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छी सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस होंगे लाइफ में। वो क्या? डिजीजेस। डिजीजेस बहुत आ जाएंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस और जो डे टू डे का स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, वो आपको भी झेलना पड़ेगा सक्सेस को पाने के लिए, ईक्यू और आईक्यू के साथ भी। लेकिन अगर आप एसक्यू के साथ जुड़े हुए हैं तो ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ये आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी आप जो भी काम करेंगे वो दूसरों के लिए नहीं करेंगे, वो करेंगे या तो अपनी खुद की खुशी के लिए या उस गॉड को सरेंडर करके। तो ईक्यू आईक्यू एसक्यू ये तीन चीज जरूरी है आज की डेट में, अगर आप कंप्लीट सक्सेस पाना चाहते हैं और सक्सेस के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं। S2, सक्सेस विद सेटिस्फेक्शन, फुलफिल्ड लाइफ, हैप्पी हेल्दी फुलफिल्ड लाइफ। सक्सेस पाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हैं, जाइए आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, सिखा देंगे आपको सक्सेस पाने के तरीके। लेकिन सक्सेस अगर पाना है और सक्सेस के साथ साथ हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, फुलफिल्ड फील करना है, तब आप इस ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, साइकोनिरोबिक ट्रेनिंग की, एनलाइटन योर इनर लाइट की, ये जो सात चक्र हैं आपके, अगर आप अपने इन सात चक्रों को एक्टिवेटेड रखते हैं और अपना क्राउन चक्र हमेशा हायर डायमेंशन के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपका ईक्यू आईक्यू एसक्यू हमेशा बैलेंस रहेगा। एसक्यू बुक्स में नहीं सीखा जा सकता, एसक्यू को आपको फील करना पड़ेगा डेली। कैसे? अपने इस क्राउन चक्र को डिवाइन पावर के साथ जोड़कर, एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करके, यह है एसक्यू डेवलप करने का तरीका। और कल हमने जब पढ़ा था आज्ञा चक्र, वहां पर हमने एनलाइटनमेंट की बात की थी। एनलाइटनमेंट का मतलब यह नहीं कि हम कुछ मिस्टिकल पावर डेवलप कर ले, कुछ मैजिकल, कुछ मिरेकल्स कर पाए। एनलाइटनमेंट का मतलब है प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट, कैसे हम इस डे टू डे लाइफ में हेल्दी हैप्पी फुलफिल्ड फील कर सकें, सक्सेसफुल भी रहें और हेल्दी और हैप्पी भी रहें, फुलफिल्ड लाइफ, लिविंग लाइफ 200%, 100% मेटेलिस्टिक, 100% स्पिरिचुअल। तो आपको इन दोनों चक्रों की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट एंड प्रैक्टिकल ब्लिस। ये दो चीजें अगर आपके लाइफ में है तो आपकी लाइफ हमेशा सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड होगी। तो मैं बात कर रहा था क्राउन चक्र की। क्राउन चक्र में हमने एक्सेस और डेफिशिएंसी को समझा। अगर डेफिशिएंसी है तो आपका आईक्यू ईक्यू एसक्यू तीनों कम हो जाएंगे, खासकर एसक्यू पे इफेक्ट आएगा अगर आप का क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। डिप्रेशन और रिजिड बिलीफ, रिजिड पर्सनैलिटी। कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं कि मेरे मुर्गे की एक टांग, तो मतलब एक टांग कि मतलब मेरा बिलीफ ही सही है, भाड़ में जाए दुनिया। बहुत रिजिड होते हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। वो केवल आईक्यू वाले लोग होते हैं, उनका ईक्यू डेवलप नहीं होता। और बहुत सारे लोग ईक्यू आईक्यू तो होता है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत ही डिसकनेक्टेड होते हैं, यानी बस वो सारी काम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। उनका नेटवर्किंग स्किल बहुत जबरदस्त होता है, उन्हें पता होता है कि सामने वाले को कैसे हैप्पी करना है, लेकिन एक चीज को वो भूल जाते हैं, वो है वो खुद को खुश करना भूल जाते हैं। पूरी दुनिया को जीत लेंगे लेकिन अपने आप से हार जाते हैं। तो अगर पूरी दुनिया को जीतना है और अपने आप को हार के जीतना है, कोई मतलब नहीं है ऐसी जीत का। सिकंदर ने भी कहा था कि मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया, लेकिन आखिरी में जाते समय उसे ऐसा लगा कि वो खुद से हार गया है, उसे कुछ भी मिला नहीं। और एक अशोक थे जिन्होंने दुनिया को भी जीता, दुनिया को जीतने के बाद बहुत सारे युद्ध लड़े उसने, युद्ध को लड़ने के बाद उसे समझ में आया कि इतनी सारी लड़ाइयां लड़के मैंने जीता तो बहुत कुछ, लेकिन मैं खुद से हार गया हूं। और फिर उसने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समझकर खुद के साथ जुड़ा, तब उसे रियल एनलाइटनमेंट पता चला और उसे रियल नॉलेज, स्पिरिचुअली कॉफिशियंट डेवलप हुआ उसका। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सात चक्र अगर आपके एक्टिव रहेंगे, सारी इमोशंस बैलेंस रहेंगी, और सबसे मास्टर चक्र, क्राउन चक्र, इसको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड रहेगा तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहेगी और ब्लिस, सेंस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शंस, ये तीन चीजें इस क्राउन चक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ये लाइफ में बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैप्पीनेस। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि अगर हेल्थ और हैप्पीनेस में से एक चीज को चूज करना हो तो किसको चूज करोगे। कुछ लोग बोलते हैं हेल्थ और कुछ लोग बोलते हैं हैप्पीनेस। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है, जो लोग बोलते हैं कि सर मुझे हेल्थ चूज करना है, हैप्पीनेस बाद में, क्योंकि मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं हैप्पी भी रहूंगा। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी कर दी जाए लेकिन लाइफ को हेल बना दिया जाए, हेल्थ तुम्हारी मस्त रहेगी, फिजिकली फिट रहोगे, सब कुछ रहोगे, लेकिन हैप्पी बिल्कुल भी नहीं रहोगे, तब उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि नहीं सर हैप्पीनेस चाहिए। और एक उल्टा भी हो सकता है कि आपके पास हैप्पीनेस फुल हो लेकिन हेल्थ अच्छी ना हो, तब आप क्या चूज करना चाहेंगे, हैप्पीनेस। स्वामी विवेकानंद, उनकी डेथ भी किसी कैंसर की वजह से हुई, डिजीज की वजह से हुई, उनके गुरुजी का भी, लेकिन क्या वो डिजीज उनके हैप्पीनेस लेवल को डिस्टर्ब कर पाई? नो, उन्होंने उस डिजीज को हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट किया और हैप्पीनेस के एक्सेप्ट करने के साथ साथ फुली हैप्पी होकर भी उन्होंने इस दुनिया को त्याग किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो डिजीज है वो फिजिकल बॉडी के लेवल पर है, मेरे मेंटल बॉडी के लेवल पर नहीं और स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं, ब्लिस बॉडी में नहीं। सटल्स बॉडी जो है, चार बॉडीज, उनको तो डिजीज ने टच भी नहीं किया है, डिजीज केवल फिजिकल लेवल पर है, वो इतना ऊपर उठ चुके थे इसीलिए वो उस डिजीज के साथ भी फुली हैप्पी थे। तो यानी कि हैप्पीनेस हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी है, और इनफैक्ट अगर आप हैप्पी हैं तो हेल्दी भी रहेंगे, समझिएगा इस बात को। दूसरा बड़ा पार्ट, हैप्पीनेस कब आएगा? हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तभी हैप्पी हो पाएंगे। आप देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तब आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस पैसे से आता है, जॉब से आता है, डिजायर के फुलफिलमेंट से आता है, इच्छाओं की पूर्ति से आता है, गोल्स के कंप्लीट हो जाने पर आता है, शॉर्ट टर्म आएगा फिर गायब हो जाएगा। ये खुशी बहना जो है ना, खुशी बहना, ये बार बार गायब हो जाएगी, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। पूरी लाइफ हम खुशी बहना को तलाशते रहते हैं, हैप्पीनेस सिस्टर, और फिर जब ये मिल जाती है कुछ दिन रहती है फिर गायब हो जाती है। बगल में गाड़ी देख ली फ्रेंड्स की, अरे यार मर्सिडीज खरीद के लिए आया, मेरे पास तो अभी किया ही है, फिर बस मन, जबकि किया आपने पिछले ही महीने खरीदी है, लेकिन उसकी जो खुशी थी किया नई खरीदने की एक महीना ही रही क्योंकि बगल वाले ने मर्सिडीज बेंज खरीद ली। अब मन दिन भर परेशान हो रहा है, खुशी बहना गायब हो गई है। जब तक मर्सिडीज बेंज नहीं आ जाएगी तब तक खुशी नहीं आएगी। आपने कंडीशन बना दी, टर्म कंडीशन लगा दिया कि जब तक मेरे पास भी मर्सिडीज बेंज नहीं होगी तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा। और फिर आपने बहुत सारे गोल्स बनाए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, पर्सनल डेवलपमेंट किया, कर लिया, मर्सिडीज बेंज आ गई आपके पास, आपको खुशी मिल गई, खुश रहना शुरू कर दिया, आपने सेलिब्रेशन किया, मस्त एंजॉय किया, फेसबुक पे पोस्ट डाले। एक महीने के बाद किसी दूसरे फ्रेंड ने जेट, प्राइवेट जेट खरीद लिया जिसके पास मर्सिडीज बेंज थी, बस गायब गायब हो गई खुशी, फिर गायब। फिर आप ढूंढ रहे हो कहां मैं क्यों दुखी हुई, मेरे पास तो मर्सिडीज बेंज भी है। तो यह होता है हमारे साथ, हर छोटे से छोटे इंसान के साथ, बड़े से बड़े इंसान के साथ। यानी सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा तब तब हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। और जब हम सेटिस्फाइड हो गए, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ग्रेटिट्यूड, सेटिस्फेक्शन के साथ अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ जी रहे हैं तब हम ब्लिस महसूस कर सकते हैं, जितना है उसके साथ संतुष्ट होना। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन इज द ब्लॉकेज इन द पाथवे ऑफ प्रोग्रेस, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट डजंट मीन्स स्टेग्नेशन। संतुष्टि का मतलब ठहराव नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा सोचना होता है कि अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मेरे अंदर का जो आगे बढ़ने का जज्बा है, जील है, वो खत्म हो जाएगी और उस कंडीशन में मैं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, पहले आपके पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखें, फिर और अचीव करने की इच्छाएं भी रखें। और जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे तब आप हैप्पी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे तो और ज्यादा अचीव कर पाएंगे। और ये हैप्पीनेस आता है ब्लिस के साथ, एक है हैप्पीनेस और एक है ब्लिस। हैप्पीनेस आएगा जाएगा, ब्लिस आया तो जाएगा नहीं। आनंद परमानंद और खुशी, हिंदी में अगर बोले तो खुशी बहना और आनंद भैया। तो क्या चाहिए, खुशी बहना को ढूंढना है या आनंद भैया को? आनंद और आनंद से परमानंद, अल्टीमेट प्लेजर। अल्टीमेट प्लेजर मींस ब्लिस। इंग्लिश में इसे डिफाइन करने के लिए वर्ड्स नहीं है शायद, परम आनंद कहा जाता है हिंदी में। और ये ब्लिस डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसे फील किया जा सकता है। इंग्लिश में एक्सटेसी कहा जाता है, ब्लिस कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। हीलिंग अफर्मेशंस, आई गो बियॉन्ड माई लिमिटिंग बिलीव्स एंड एक्सेप्ट myself totally, I honor my body as a temple that nourishes my soul, I am divine guided and inspired, I am divinely guided and inspired, I am infinite and boundless, no boundaries, infinite, connected with this universe as well as डिवाइन पावर्स। इसीलिए तो इसमें 1000 पंखुड़ियां दी गई हैं, 1000 चिप लगी हुई हैं। जब भी आप इस चक्र के साथ जुड़े महसूस करें 1000 पंखुड़ियों वाला कमल आपके सर पे खिल रहा है, 1000 चिप्स आपके ब्रेन में से यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को और एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रही हैं। इस फीलिंग के साथ जुड़े, इस चक्र के साथ, ज्ञान मुद्रा। जब आप इस मुद्रा में बैठते हैं, ज्ञान, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन, एनर्जी के साथ साथ इंफॉर्मेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठें। इसीलिए गुरुकुल के समय, वैदिक काल के समय जब ज्ञान ग्रहण करते थे शिष्य, तो उन्हें ज्ञान मुद्रा में बिठाया जाता था। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे सर्टेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और वो न्यूरॉन्स हमारे कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लर्निंग के लिए, क्योंकि ये जो चक्र है ये हमारे हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें जो हमारी वैदिक साइंस में गोल्डन एज में बताई गई हैं, जिसे हम फिलॉसफी बोल रहे हैं, वो साइंटिफिक हैं। आने वाले समय में सारी चीजें रिसर्च होकर राइट डाउन की जाएंगी, फिर इनके ऊपर बड़े बड़े कोर्सेज आएंगे। और हम सब तो भाग्यशाली हैं कि आज हम इन चीजों को सीख रहे हैं, आने वाले समय में ये कोर्स में एड होने वाली है, इनके ऊपर डिग्रीज होंगी, पीएचडीज होंगी, क्योंकि ये मस्ट है, यही नीड है लाइफ का। आने वाला समय इतना खराब रहेगा कि जब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज और बढ़ जाएंगी, सॉल्यूशंस कुछ होंगे नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें बाय बैक जाना ही पड़ेगा, रिवर्स जाना ही पड़ेगा, और रिवर्स जाकर वैदिक साइंस को एक्सप्लोर करना होगा, वहां पर सारे सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि वैदिक साइंस इज द अल्टीमेट साइंस। जिसे आज हम फिलोसफीज बोल रहे हैं वो साइंस है, क्योंकि उसमें मेटाफिजिकल और फिजिकल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक समय 90s में जब मेटाफिजिकल साइंस, क्वांटम फिजिक्स आया, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, सो कॉल्ड फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, उन्होंने मजाक उड़ाया आइंस्टीन का, नील बोर का, जो क्वांटम फिजिक्स के फाउंडर्स थे, लेकिन उनके पास कुछ मेटाफिजिकल पावर्स थी, वो एक्सेस कर पा रहे थे उसे, उनकी इमेजिनेशन, उनकी विजुअलाइजेशन को उन्होंने वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस किया, और फिर वो समय आया जब उनकी चीजों को मैथमेटिकली ड्राइव किया गया, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को मैथमेटिकली ड्राइव किया गया, और मैथमेटिकली ड्राइव करने के बाद फिर वो सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, कौन से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किया गया, और आज जो आज हम जूम के द्वारा बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इनफैक्ट आज हमारी टेक्नोलॉजी का मोर देन 60-70% चीजें क्वांटम फिजिक्स की मदद से चल रही हैं। आज ये फिजिक्स साइंस बन गया है, लेकिन ये साइंस यहीं रुक नहीं रहा है। आज अगर हम फिजिक्स की बात करें, दैट इज अ ऑब्सोलीट साइंस, क्वांटम फिजिक्स इज द लेटेस्ट साइंस। सेम टू सेम आने वाले समय में ये सारी साइंसेस, चक्र विज्ञान, इन सबको अगर समझना है तो आपको क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान मुद्रा के साथ इस अपार नॉलेज को, इस मेटाफिजिकल साइंस को समझने का प्रयास करें। वॉयलेट कलर के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके इस चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करेंगे, और ब्लिसफुल 3D स्टीरियोग्राफिक इमेज विजुअलाइजेशन, वॉयलेट कलर, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, 10 मिनट्स के लिए इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, 3D इमेज विजुअलाइज करना है, 21 टाइम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, खुली आंखों में, फिर बंद आंखों में, और फिर उसके बाद आफ्टर इमेज को विजुअलाइज करते हुए उस चक्र के साथ जुड़कर इस चक्र को एक्टिवेट करना है, और फिर इस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करना है। ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा दोनों कर सकते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए वायु मुद्रा भी लगाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये चक्र इनसोम्निया के लिए, नींद की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, ब्लिसफुल नीरोबिक आपकी मदद करेगा। क्या सेंटेंसेस बोलना है, क्या अफर्मेशंस, आई एम ब्लिसफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल विद फुल ऑफ ब्लिसफुल एनर्जी, आई एम मर्ज्ड विद द ओशन ऑफ ब्लिस, मैं एक परम आनंद आत्मा हूं और मुझ में परम आनंद पूर्ण ऊर्जा भरी हुई है, मैं परमानंद के साथ इस ऊर्जा के सागर में समाया हुआ हूं। तो ये जो चक्र है, शानदार चक्र, क्राउन चक्र, इसके साथ आज आप जुड़ें। अब हम सीखेंगे ब्लिसफुल न्यूरोबिक कैसे किया जाता है, हमिंग साउंड के साथ। रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत गहरा कनेक्शन बनेगा, और सोते समय भी आप 6-8 घंटा उस डिवाइन पावर के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी बैटरी 100% चार्ज होगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए तो ये रामबाण दवा है, सोने से पहले 10 से 15 मिनट इस ब्लिसफुल निरोबी को करके सोएं, नींद बहुत गहरी पड़ेगी। एनलाइटमेंट निरोबिक सुबह कर लेना चाहिए खाली पेट, और ब्लिसफुल निरोबिक रात को सोते समय कर लेना चाहिए सोने से कुछ देर पहले। चलिए शुरुआत करते हैं ब्लिसफुल निरोबिक की। जुड़िए मेरे साथ, आप स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट करेंगे मेरे साथ ज्ञान मुद्रा में।
आइए आप आपको दूसरा एक्सरसाइज बताते हैं जिसको हम परमानंदायक निरोबिक कहते हैं, ब्लिसफुल निरोबिक्स कहते हैं। ब्लिसफुल निरोबिक्स यानी अपने अंदर परमात्मा से परमानंद की किरणें को लेना और अपने अंदर एक इटर्नल ब्लिस का अनुभव करना। मन परमात्मा से कंप्लीटली जुड़ जाए, एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो, इसका ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम कोई भी दो मुद्रा में से एक मुद्रा का चयन करेंगे। दो मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यानी हम इन दो उंगलियों को जोड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेगी, यह है ज्ञान मुद्रा। वायु मुद्रा में इसी उंगली को हम अंगूठे के नीचे रखेंगे और दबा देंगे। देखिए कैसे दबा दिया, यह वायु मुद्रा। वायु मुद्रा उन व्यक्तियों के लिए रिकमेंडेड किया जाता है जिनके गांठों में दर्द है, ज्वाइंट्स पेन है, गठिया है या आर्थराइटिस है या बॉडी में स्वेलिंग्स है, उस केस में आप वायु मुद्रा करेंगे। नहीं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज्ञान मुद्रा करेंगे। तो आप मुद्रा का चयन करेंगे। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज को करते समय हम व्यंजन की आवाज निकालते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स एंड कॉन्सनेंट्स होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स में बीच वाला मो और एम और एन, मो और नो होता है। इन दोनों की कंबाइंड ध्वनि को हमिंग कहते हैं। हमिंग एक्सरसाइज इतना पावरफुल है कि हमारे पूरे बॉडी को वाइब्रेट्स करता है, ब्रेन को वाइब्रेट्स करता है और मेंटल एनर्जी को शरीर के अंदर प्रवाहित करता है। स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटल एनर्जी में बदल जाती है, मेंटल एनर्जी फिर ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर के अंदर फैलती है और हमारे अंदर एक माइंड और बॉडी का रेसोनेंस क्रिएट होता है। माइंड बॉडी का इंटीग्रेशन होता है और मन एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता है, परमानंद का अनुभव करता है। तो इस एक्सरसाइज में तीन बातों पर ध्यान देना है। पहली बात कि हम मुद्रा या तो वायु मुद्रा करें या हम ज्ञान मुद्रा करें, और जीभ को तालू में चिपका के रखें, तालू में चिपका रहेगा, मुंह बंद रहेगा, नाक से लंबा सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे हमिंग साउंड करते हुए, और साथ में परमात्मा को अनुभव करेंगे कि हमारे सिर से एक फुट ऊपर है और बैगनी रंग की किरणें हमारे ऊपर प्रवाहित कर रहा है और अपने आप में आनंद का अनुभव करेंगे। एक्सरसाइज कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, इसको खाली पेट रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में एक बार सारा एक्सरसाइज करना है। और अगर आपको नींद की बीमारी है तो आप इसको तीन बार करेंगे और सोने के पहले 10 मिनट जरूर करेंगे। आप देखिए कैसे करते हैं, मैं वायु मुद्रा में एक्सरसाइज करूँगा, खुशी ज्ञान मुद्रा में एक्सरसाइज करेगी। एक बार मैं सैंपल दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। अभी हम 5 बार करेंगे, आप देखिए।
अभी आपने ब्लिसफुल निरोबिक को सीखा एक बार, अब आप साथ में करेंगे हमिंग साउंड के साथ।
एक बार सारा एक्सरसाइज करना है। और अगर आपको नींद की बीमारी है, देखिए कैसे अभी हम 5 बार करेंगे, आप देखिए।
जब आप इस ब्लिसफुल निरोबिक को कर रहे हैं, टंग जो है तालू के साथ चिपका हुआ रहेगा उल्टा करके ब्रेवर्स में, और हमिंग साउंड के साथ इसे करना है। अब हम ब्लिसफुल निरोबिक के बाद क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना सीखेंगे निरोबिक स्पा विजुअलाइजेशन मेथड के द्वारा, और उसी के कॉन्टिन्यूटी में बीज मंत्र के द्वारा उस चक्र के साथ एक्टिवेट करेंगे साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा और आंखें बंद। निरोबिक स्पा के दौरान विजुअलाइजेशन मेथड से अभी आप पहले देखते हुए भी कर सकते हैं, फिर बाद में आपको वो सारी चीजें इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के द्वारा माइंड मेंटल स्क्रीन पर मूवी की फॉर्म में करना है।
ओम शांति। आइए आपको निरोबिक स्पा के फाइव स्टेप्स के बारे में मैं बताता हूँ। एरोबिक स्पा करने के लिए सबसे पहले प्रथम चरण में 3 बार लंबा और गहरा श्वास लेंगे। आप सभी लीजिए 3 बार लंबा और गहरा श्वास। धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अब अपनी फैली हुई एनर्जी को समेटना है दूसरे स्टेप में। आप सभी फील कीजिए कि आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। न्यूरो सेल्स में नीले रंग की ऊर्जा विद्यमान है और आप उस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले फील कीजिए पैर के अंगूठे से, उंगलियों से आपकी ऊर्जा विड्रॉ हो रही है। धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की ओर आ रही है, एड़ी से होते हुए धीरे 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 ऊपर घुटने तक। घुटनों से नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे घुटनों से ऊपर कमर तक और कमर के नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे अब ऊर्जा को कमर से ऊपर धीरे धीरे नाभि तक, नाभि से ऊपर धीरे धीरे हृदय तक, हृदय से ऊपर धीरे धीरे गर्दन तक। और आप सभी फील करें कि गर्दन के नीचे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया और अब पूरी ऊर्जा को गर्दन से ऊपर विड्रॉ करके भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें और फील करें कि मैं एक चमकता हुआ ज्योति स्वरूप सितारे की तरह बिल्कुल भ्रुकुटी के बीच में स्थित चमक रही। फील कीजिए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के बीच में हूं। अब तीसरे स्टेप में फील कीजिए कि मेरे ऊपर सिर के ऊपरी हिस्सों में सहस्त्रार चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह वो धीरे धीरे खुल रहा है। फील करें सिर के ऊपरी हिस्सों में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिल रहा है और ईश्वरीय ऊर्जा लेने के लिए तैयार है। अब चौथे स्टेप में दिल से परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को आप आह्वान करें। और बोले दिल से, हे प्रभु, ओ गॉड फादर, आप आइए और मेरे शरीर के अंदर जितने चक्र हैं, जितने ऊर्जा केंद्र हैं, उन सभी ऊर्जा केंद्रों को हील करें, क्लीन करें और शक्तिशाली बनाएं। और आप अनुभव करें कि स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप से बैंगनी रंग की किरणें की बारिश हो रही है। परमात्मा हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, आशीर्वाद की बैंगनी रंग की किरणें झरने की तरह सहस्त्रार चक्र के ऊपर गिर रही है और पूरा सहस्त्रार चक्र आनंद की किरणों से भरपूर हो गया। मन और बुद्धि उस आत्मा के पूरे कंट्रोल में स्थित है। मेरा मन बिल्कुल शांत और बुद्धि परमात्मा से आशीर्वाद की किरणों से आनंदित हो गई और मैं आत्मा परम आनंद का अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा परमानंद स्वरूप हूं। आई एम ब्लिसफुल सोल। परमात्मा से सर्व शक्तियां हमें मिल गई है। हमें शरीर के सारे न्यूरो सेल्स क्लीन और ऊर्जा से भरपूर हो गए। सारे ऊर्जा केंद्र हील हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं और पावरफुल बन गए हैं। दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकल रहा है। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपको दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा मुझ आत्मा को भरपूर किया, शरीर के ऊर्जा केंद्रों को स्वस्थ बनाया। आपको दिल से शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं अपने सहस्रार चक्र को परमात्मा की ऊर्जा को लेकर के बंद कर रहा हूं। और आज्ञा चक्र में स्थित नीले रंग की ऊर्जा को पूरे न्यूरो सेल्स में फैला रहा हूं। ये पांचवा स्टेप है। अब अनुभव कर रहा हूं कि नीले रंग की ऊर्जा हमारे न्यूरो सेल्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा फैलने लगी। धीरे धीरे चेहरे के अंदर, गर्दन में, दोनों बाहों में, गर्दन से नीचे धीरे धीरे हृदय में, फेफड़ों में, धीरे धीरे पेट में, पेट के निचले हिस्सों से होते हुए दोनों पैरों में, घुटनों से होते हुए पैर के निचले हिस्सों में और एड़ी से होते हुए पैर के उंगलियों तक, अंगूठे तक पहुंच गए। अंत शरीर नीले रंग के ऊर्जा से भरपूर हो गया। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया, एनर्जेटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। अपना तीन बार लंबा और गहरा सांस लेकर के इस शरीर में अपने आप को आत्मा के रूप में समझें और फील करें परमात्मा भी हमारे द्विकुटि के बीच में अपनी ऊर्जा के द्वारा विद्यमान है। मैं कंबाइंड स्वरूप में परमात्मा के साथ में हूं और उसकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, जिसका मैं मालिक हूं, कंट्रोलर हूं। इस रूप में अपने आप को अनुभव करें और पूरे टीम के लिए इसी रूप स्वरूप में स्थित होकर के कर्म योगी बने। ओम शांति शांति।
इस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए देखें, महसूस करें। 60 ट्रिलियन सेल्स, 100 बिलियन न्यूरॉन, ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है।
सहस्रार ओगुं सत्यम ओगुं सत्यम सत्यम ओगुं सत्यम ओगुं सत्यम सत्यम ओगुं सत्यम कुंडलिनीयारोहणम् कुंडलिनीयारोहणम्
को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। डिवाइन पावर का धन्यवाद बोलते हुए उसके साथ अपना कनेक्शन महसूस करें। जो भी डिवाइन गाइडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने प्रेजेंट लाइफ के लिए उनसे चाहिए, उनसे आह्वान करें कि मुझे आपकी डिवाइन गाइडेंस डाउनलोड करने में मदद करें। महसूस करें वो आपसे कुछ वार्तालाप करना चाह रहे हैं। प्रेयर में हम अपनी बातें उन्हें सुनाते हैं, मेडिटेशन में हम उनकी बातों को सुनते हैं। मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। आज वो आपसे आपकी इस लाइफ के बारे में, आपके पैशन के बारे में, आपके पर्पस के बारे में, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। उस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहकर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे डाउनलोड करें। वो हमारे आसपास ही होते हैं और अपने होने का एहसास हमें ऊर्जा के द्वारा कराते हैं। साथ ही साथ वो जो भी हमें मैसेजेस देने होते हैं उन्हें अदृश्य फॉर्म में, कुछ शब्दों में, कुछ चित्रों में या किसी सेंसेशन में हमारे इंटेलेक्ट, माइंड ब्रेन और बॉडी के थ्रू हमें तक पहुंचाते हैं। सुने वो क्या कहना चाह रहे हैं और जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उस मैसेज को स्वीकार करें, डाउनलोड करें। कुछ देर उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हुए, अपना समय लेते हुए, जब आपको लगे आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें और वापस प्रेजेंट की कॉन्शियसनेस में जुड़ जाएं। आशा करता हूं आपको एक आनंद की अनुभूति हुई होगी, कुछ मैसेज भी आपको डाउनलोड हुए होंगे। तो आज आपने क्राउन चक्र के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस के साथ अटैच करना सीखा, उनसे दो चीजें, एनर्जी और इंफॉर्मेशन लेना सीखा और अपनी लाइफ में बदलाव लाना सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन लाना सीखा। कुछ देर आपके साथ जुड़ूंगा। आज का इस सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।